الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم ابھی تک اس بات پر پہنچے تھے کہ سیدنا عثمان کو بلوائیوں نے ان کے گھر کا گھیرا ڈال لیا تھا اور ان کو ایک طرح سے گھر میں قید کر دیا تھا. شروع میں تو وہ مسجد بھی تشریف لے جاتے تھے لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو گھر میں سے نکلنے سے بھی روک دیا گیا تھا. یہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا تھا اور اس کے اندر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا، تیسرے دن کیا ہوا، مگر جو بھی واقعات ملتے ہیں کتابوں میں وہ سارے سکیٹرڈ ہیں، یعنی کہیں کوئی واقعہ کہ کوئی واقعہ، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس دن میں ہر ہر دن میں کیا ہوا. تو ہم ان واقعات کو بھی دیکھیں گے کہ جب محاصرہ ہوا تھا تو اس وقت کیا چل رہا تھا. پہلے تو یہ کہ آپ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ ایک دن سیدنا عثمان اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کی قسم دے کے تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو تم میں سے موجود تھا وہاں پر تو وہ یہ گواہی دے کہ کیا میں وہ نہیں تھا جس نے بئیر روما کا کنواں جو تھا وہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اس وقت جب مسلمانوں کے پاس پانی پینے تک کو نہیں تھا. اور کیا لوگوں نے کہا ہاں آپ ہی وہ ہیں. پھر فرمایا کیا میں وہ نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل حرا کے اوپر چڑھے تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے اوپر ایک شہید، دو شہید اور ایک نبی اور ایک صدیق ہیں، تو کیا میں وہ نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ تھے. پھر یہ بھی پوچھا کہ کیا بیعت رضوان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت لی تھی اور میں موجود نہیں تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا تھا کہ اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے اور یہ جیسے کہ گویا عثمان کا ہاتھ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا. پھر فرمایا کہ کیا تبوک میں جب جیش العسرہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن مانگا تھا تو اس وقت آدھے لشکر کو تیار کرنے والا کون تھا؟ کیا میں نہیں تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، یعنی اس طرح کر کے وہ گنوا رہے تھے. پھر فرمایا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی توسیع، اس کی ایکسپینشن کے لیے کب فرمایا تھا کہ جو اس کی ساتھ زمین لے کے اور اس کو اس میں شامل کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، تو کیا میں نے نہیں دی تھی زمین؟ تو لوگوں نے کہا ہاں. یعنی لوگوں کو یہ باور کرانا تھا کہ آپ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن محاصرہ کرنے والوں نے ایک نہیں سنی. اور وہی مسجد جس کے لیے زمین انہوں نے دی تھی، ان کو اسی مسجد میں جا کے نماز پڑھنے تک سے روک دیا گیا، جبکہ ان کا گھر مسجد سے بالکل ساتھ ہی تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد میں اگر کوئی اونچی آواز میں بات ہوتی تھی تو یہاں پہ سنتی تھی، یہاں سے آواز دی جائے تو وہاں پہ سنائی دیتی تھی. حتیٰ کہ محاصرہ کرنے والوں میں سے ایک جو شر پسند تھا وہ لوگوں کو نماز بھی پڑھاتا تھا وہاں پہ، اور ایک صحابی ہیں انہوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھا تو سیدنا عثمان سے اس کے بارے میں مشورہ کیا. تو سیدنا عثمان نے فرمایا اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہو. مزید فرمایا کہ نماز ان لوگوں کے اچھے اعمال میں سے ہے، جب یہ لوگ اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو اور جب برائی کریں تو اس میں ان کا ساتھ نہ دو. یہ ہمیں بہت بڑا ایک رول پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ برا کام کر رہا ہے لیکن اگر وہ کوئی بھلائی کا کام کرے تو اس کو بالکل ہی آپ ایکسکلوڈ نہ کر دیں، بلکہ جو اس کی بھلائی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ مل کے بھلائی کے کام میں شرکت کرے، لیکن جو اس کی برائی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ایون قریش مکہ نے جب وہ تو کافر تھے، انہوں نے بھی جب ایک معاہدہ کیا تھا آپس کے اندر کہ ہم جو جب آنے والا ایک مسافر لٹ گیا تھا اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ جو مسافر آئیں گے ان کے ساتھ ہم کیسا سلوک کریں گے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تعاون والبر والتقوی، اس کا ایک عملی نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ جب جو بھلائی کا کام ہے اس کا حکم بھی دو اور جو بھلائی کے کام ہے اس میں تعاون بھی کرو. ولا تعاون والاثم والعدوان، لیکن جو گناہ کے کام ہے، برائی کے کام ہے، اس کے اندر تعاون نہیں کرنا. तो भलाई का काम चाहे कोई काफिर ही क्यों ना कर रहा हो उसके साथ भी शामिल हो। तो जब उन्होंने पूछा हम इसके पीछे कैसे नमाज पढ़े इस शरपसंद आदमी के पीछे, तो क्या फरमाया कि नहीं, जब वो भलाई का काम करे तो तब उसके पीछे आप खड़े। तो हम एक बिल्कुल ब्लैकआउट ब्लैक लिस्ट कर देते ना किसी को, कि हम कह देते बस ये बुरा है, तो इसका हर काम ही बुरा है। नहीं, जो उसमें भी कोई खैर का काम भी करता होगा उसमें उसके साथ खड़े हो जाइए, ठीक है? क्योंकि हमारी दोस्ती और दुश्मनी अल्लाह की खातिर होती, किसी इंसानों से नहीं होती इस तरह से। तो जब बागियों ने आपके घर को पूरी तरह घेरे में ले लिया, तो उन्होंने फिर आपसे मुतालबा किया कि आप दस्तबरदार हो जाएं खिलाफत से, और धमकी दी भी कि हम आपको कत्ल कर देंगे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उस्मान रजी अल्लाह तआला से फरमाया था कि क्या अगर आप जिंदा रहते हैं, अगर आप दस्तबरदार हो भी जाते हैं, तो क्या आप हमेशा जिंदा रहेंगे? तो फरमाया था नहीं, फिर भी तो हमेशा नहीं जिंदा रहना, तो फिर क्यों? तो उन सहाबा का मशवरा भी ये था कि आप ऐसे मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने ये छोड़ दिया तो आप एक रस्म या एक रिवाज बना देंगे कि जब भी आइंदा कोई किसी खलीफा के खिलाफ होगा तो वो उसके घर का इसी तरह मुआसरा करके और ऐसे ही करेंगे और उनको जबरदस्ती करके निकाल देंगे। इसी तरह अब्दुल्ला बिन सलाम जो थे सहाबी रसूल, वो उसे बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने भी यही मशवरा दिया कि आप अपने हाथ बांधे रखें, आप ना लड़ाई करें, और आप इनको जो भी ये करते हैं ये करने दें, लेकिन आपने नहीं इनके, ताकि आप अल्लाह ताला के यहाँ मजलूम के तौर पर खड़े हो जाएं, जालिम के तौर पर नहीं। तो अगर आपके पास जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि आप जालिम बन सकते हैं या मजलूम, तो मजलूम बनने को प्रेफर करें, लेकिन जालिम कभी ना बने, क्योंकि मजलूम को उसका हक अल्लाह ताला कयामत के दिन दिला देगा, यहाँ पे नहीं भी मिलता, लेकिन जालिम जो है वो कयामत के दिन अपने जुल्म की वजह से कभी रोशनी नहीं पा सकेगा, अंधेरों में होगा। तो आपने हालात का जायजा लेके मसलहत इसी में समझी कि हथियार ना उठा जाए, और लोगों को भी यही कहा कि आपने मेरी तरफ से हथियार नहीं उठाने। और जबकि आपको ये भी मैंने बताया था कि इनको इतना अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक पहुंच जाएंगे कि मुझे कत्ल करने के दर पे हो जाएं, इसका अंदाजा नहीं था। आप याद रखिए कि इनसे पहले पूरी तारीख इस्लाम में कभी किसी मुसलमान ने मुसलमान के खिलाफ तलवार नहीं उठाई थी। देखिए ना, आप इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर गुजरा, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, हज़रत उमर का, कभी भी मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ा था। ये पहली दफा थी कि ऐसा एक सीन सामने आ गया। तो जब इनको इन्होंने बाहर वो आवाजें सुनी कि मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तो उस वक्त घर में दाखिल हुए तो रंग पेल था, बिल्कुल पीला हुआ हुआ था, और फरमाते हैं अपने घर वालों से कि ये तो मेरे कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, हालांकि मैंने क्या किया? कत्ल तो सिर्फ उस सूरत में है कि अगर कसास है, या किसी ने जना किया है शादीशुदा ने, या कोई मुर्तद हुआ है, मेरे मेरे कत्ल करने का क्या सवाल है? और फिर आप देखते हैं कि उन लोगों ने कुरान की आयात को किस तरह से गलत रंग देकर और उनको कोट किया जो कि उनके ऊपर बनती भी नहीं थी। और कुरान को हमेशा इसी तरह यूज किया जाता रहा है हर दौर में, शरपसंदों ने भी कुरान को इस्तेमाल किया, नहीं इसी कुरान से लोग गुमराह भी होते हैं, इसी से लोग हिदायत भी पाते हैं। आज तक भी आप देखें जो लोग शरपसंद हैं और अपने एजेंडास पूरा करना चाहते हैं, वो लोगों के सामने कुरान की आयतें रखते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कुरान की ये आयत किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी, इसकी बैकग्राउंड क्या है। सिर्फ ये नहीं कि आप वो कुरान सुना के और अपने पीछे लगा लें, और आप सही देखो ना कुरान पढ़ने वाले हैं, देखो ना कुरान, आप देख लें कि वो मस्जिद नबी में जाके नमाज पढ़ा रहे हैं, शरपसंद इमामत कर रहा है। अब कोई हमारे जैसा तो देख के कहे हाँ देखो इमामत करता है, मस्जिद में खड़ा हुआ है, लो जी इसके पीछे चलो, नहीं अपनी। और आज का वक्त जो है ना, ये दौरे फितन है, दज्जाली दौर है, इसमें तो खास तौर पे दज्जाल का सबसे बड़ा जो फितना होगा ना वो डिसेप्शन है, यानी दिखाएगा कुछ, उसकी जन्नत जहन्नम हदीस में है ना, उसकी जन्नत जहन्नम लगेगी, जहन्नम जन्नत लगेगी। आज के दौर में जो चीज आपको सही लग रही है वो कुछ और है, वो गलत है, और आपको लगता है नहीं ये तो सही लग रही है, उसके पीछे कुछ और होता है, जो गलत लग रही है उसके पीछे कुछ सही चीज होती है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो एक बात याद रखिएगा, आगे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये सहाबा का इस बारे में क्या स्टांस रहा था, इंशाल्लाह हज़रत अली के जब हम वाकयात पढ़ेंगे, कि तब वो पीछे होके बैठ जाते थे, स्टेप बैक, किसी का भी साथ नहीं देना। जब आपको कंफ्यूजन हो, ये नहीं कि आप अपना वेट किसी एक के पलड़े में डाल दें, ये ना करें। अगर आपको नहीं समझ आ रही ना, तो बस खामोश हो जाए, स्टेप बैक कर लें। फिर हम देखते हैं कि अबू सौर फहमी से रिवायत है, वो कहते हैं मैं सैयदना उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ, जब वापस जाने लगा तो मिस्र के खारजी दोबारा वापस आ गए, मैं वापस सैयदना उस्मान के पास गया और आपको उनके आने की इतला दी। आपने फरमाया तूने देखा वो किस इरादे से आए हैं, मैंने कहा उनके चेहरों से शर टपक रहा है और उनका सरबरा इब्ने आदीस बलवी है। फिर इब्ने आदीस मिंबर नबी पे चढ़ा और लोगों को नमाज जुमा पढ़ाई, शरपसंद है, और खुतबे में उस्मान रजी तलाम पे तनकीद की उसने, और कहते हैं कि मैंने उसकी तमाम बातें जाकर सईदना उस्मान को बताई तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम उसने झूठ बोला है, और अगर उसने ये लघ बात ना की होती तो मैं जो बातें आपको बताने लगा हूं कभी ना बताता, कि मैं इस्लाम, अगर उसने ऐसी बातें ना की होती तो उस्मान रजी तलाम फरमाते हैं कि मैं ये बातें कभी ना कहता, क्योंकि वो सहाबा कराम ना अपनी तारीफ या अपनी कोई ऐसी बात, नेकी की बात बताने से गुरेज करते थे। लेकिन फरमाते हैं उसने चूंकि ऐसी बात किया तो मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि मैं इस्लाम लाने वाला चौथा आदमी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी एक बेटी का रिश्ता दिया, फिर वो फौत हो गई तो दूसरी बेटी को मुझसे ब्याह दिया। मैंने जाहिलियत इस्लाम में कभी बदकारी नहीं की, ना कभी चोरी की, इस्लाम लाने के बाद भी ना मैंने कभी गाना गाया ना इसकी तमन्ना पैदा हुई, और फिर मैंने हर जुमे को एक गुलाम आजाद करता चला आया हूं, और अगर किसी जुमे को ना कर सका तो अगले जुमे को दो गुलाम आजाद करता था। और जब इन्होंने देखा कि बागी जो है ना वो किसी तरह से बाज नहीं आ रहे और वो इनके कत्ल पर तुले में, तो दीवार में एक सुराख था उससे झांके कि उन बाहर तो आने नहीं देते थे, मुखातिब करते हुए फरमाया ए लोगो मुझे कत्ल ना करो, ना मुझे नाराज को रहो, अल्लाह की कसम अगर मुझे कत्ल कर दोगे तो दुश्मन से कभी इकट्ठे होकर नहीं लड़ सकोगे, ना कभी दुश्मन से जिहाद कर सकोगे, तुम्हारे इख्तलाफात इस कदर शदीद हो जाएंगे कि एक दूसरे के आमने सामने हो जाओगे। फिर आपने दो उंगलियों को एक दूसरे में दाखिल करके फरमाया तुम इस तरह एक दूसरे से उलझते जाओगे, और आज तक देखें ये चल रहा है। और इसी तरह किस तरह सहाबा कराम ने, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, किस तरह सहाबा कराम ने अपनी तरफ से सपोर्ट दी, क्योंकि ये भी चीज बहुत इस चीज को उछाला गया कि सहाबा कराम जो थे वो नहीं, वो भी उनके खिलाफ हो गए थे, ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि सईदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन्होंने सईदना उस्मान की तरफ पैगाम भेजा कि मेरे साथ 500 लोग हैं जीरा पहने हुए, आपकी इजाजत हो तो मैं उन लोगों का मुकाबला करके आपका दिफा करूं, क्योंकि आपने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जिसकी वजह से आपका खून बहाया जाए। सईदना उस्मान ने फरमाया जजाक अल्लाह खैर, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से खून खराब हो। देखिए उनको ना सबसे ज्यादा थे ये था कि एक बात याद रखें, ये जो लोग थे ना ये किसी और के पीछे नहीं आए थे, सिर्फ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे थे, तो वो कहते थे कि मेरी वजह से, कि मैं अपने आप को बचाने की खातिर और मुसलमानों का खून बह जाए ये नहीं मैं चाहता। अगर इनको मेरे से दुश्मनी है या मेरे मेरे पीछे ये आए हैं तो मेरी वजह से और लोग कत्ल कर दिए जाएं ये नहीं पसंद करते थे। इसी तरह सईदना जुबैर बिन अवाम जो थे उनके एक गुलाम थे, आजाद करदा गुलाम अबू हबीबा, वो बयान करते हैं कि जिन दिनों उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासरा किया गया था तो मुझे सईदना जुबैर ने एक खत दे के उनके पास भेजा, मैं एक गर्म दिन में उनके पास गया, आप कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे, आपके पास सईदना हसन बिन अली, अबू हुरैरा, अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर मौजूद थे। ये कौन लोग थे कि ये लोग, इनमें देख लें हजरत हसन भी थे, हजरत फातिमा और हजरत अली के जो बेटे हैं हजरत हसन, तो जो लोग कहते हैं ना कि हजरत अली के साथ इनके क्लैश थे और जी हजरत अली के साथ कुछ, हजरत अली भी इनको नापसंद करते थे, ऐसी कोई बात नहीं, वरना वो अपने बेटे को कभी ना लाते। बल्कि एक वाकया ये आता है कि एक दिन हजरत अली इनके पास जा रहे थे तो उन्होंने जाने नहीं दिया अंदर, तो उन्होंने अपनी पगड़ी जो थी, वो उस जमाने के अंदर पगड़ी हर एक की एक एक इज्जत की भी निशानी होती थी और हर एक की पगड़ी पहचानी जाती थी ये फलां की है, उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और उसको उछाल के उनके दरवाजे की तरफ फेंका कि उनके जो दरमान वगैरह वो लेके अंदर चले जाएं और जाके उनको दिखाएं कि मैं आया था लेकिन मुझे आने नहीं दिया गया। हजरत उस्मान का घर जो था ना बड़ा वसी था, वो कसरे उस्मान यानी एक महल समझ ले, उस्मान गनी का महल कहा जाता था उसको, इतना बड़ा था क्योंकि आप आगे देखेंगे कि इतने लोग अंदर दाखिल हो गए थे। तो उन्होंने देखा ये जो गुलाम वहां पे गए, तो उन्होंने देखा हजरत हसन वहां पे हैं, अबू हुरैरा कितने बड़े सहाबी रसूल हैं, फिर अब्दुल्ला बिन उमर हजरत उमर के बेटे, फिर अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये सब वहां पे मौजूद है। तो इन्होंने क्या किया था, वॉलंटियर किया था कि हम आपके घर में रहेंगे, हम आपके घर में रहेंगे आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो कहते हैं वो जो गुलाम है वो कहते हैं मैंने कहा मुझे सैयदना जुबैर बिन अवाम ने भेजा है और वो आपको सलाम कहते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी इताअत पर कायम हूं, यानी मैं आपके साथ हूं, ना बदला हूं और ना मैंने अहद तोड़ा है, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं आपके घर में आपके पास आ जाता हूँ और आपका दिफा करने वालों में शामिल हो जाता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं अपने ही घर में रहता हूँ। तो बनी अमर बिन औफ ने कल सुबह मेरे पास आने का वादा किया, वो कहते हैं आप जो हुक्म दें हम तैयार हैं इसके लिए। जब सैयदना उस्मान ने ये खत वाला पैगाम सुना तो फरमाया अल्लाह अकबर, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए जिसने मेरे भाई को बचा लिया यानी इनमें शामिल होने से। फिर अबू हुबैबा हबीबा से फरमाया कि उनको मेरा सलाम कहना और पैगाम देना कि मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है, हो सकता है अल्लाह आपके जरिए मेरा दिफा करे। और जब सईदना अबू हुरैरा ने यह खत पढ़ा तो खड़े होकर फरमाया क्या मैं तुम्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई बात ना बताऊं। लोगों ने कहा क्यों नहीं, जरूर बताइए। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह की कसम यकीनन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि मेरे बाद कई फितने आएंगे। तो हमने पूछा कि या रसूल अल्लाह कोई रास्ता होगा इन फितनों में बचने का, आपने फरमाया तुम अमीन और उसके ग्रोह के साथ शामिल रहना। और वो अमीन कौन थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके हजरत उस्मान की तरफ ऐसे इशारा किया था कि इनके साथ रहना, फितने आएंगे तुमने इनके साथ रहना है। क्योंकि मैंने आपको एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशीन गोई भी बताई थी ना कि आपने फरमाया था कि जो तीन फितनों के अंदर साबित कदम रहा वो बच गया, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, एक दज्जाल जब आएगा वो, और एक आपने फरमाया था एक खलीफा होगा जो हक के साथ चिमटा होगा और सबर करने वाला होगा, उसके दौर में भी जो फितने से बच गया और वो यही खलीफा थे। तो लोग खड़े हुए और कहने लगे यकीनन अब तो दलील हमारे हाथ में आ गई है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ गई है, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन आप हमें जिहाद की इजाजत दें। सैयदना उस्मान ने फरमाया जो मेरी इताअत पर कायम है ना, यानी मैं खलीफा हूं और जो मेरी इताअत पर कायम है तो मैं उसको हुक्म देता हूँ कि वो किताल नहीं करे और लड़ाई नहीं करे। सैयदना मुगीरा बिन शोबा जो थे, ये भी रिश्तेदार लगते थे, मुहासरे के दौरान सईदा मुगीरा बिन शोभा उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए और कहा आप अवाम के इमाम हैं और जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो आपके इल्म में है, मैं आपको तीन बातों में से एक को चूज करने का मशवरा देता हूँ कि अब तीन में से एक बात जरूर आप इंतखाब कर लें। पहली बात उन्होंने क्या कही, उन्होंने कहा आप मैदान में निकल आए, आप मुकाबला करें, आपके पास अफराद हैं, कुव्वत हैं, आप हक पे हैं और वो बातिल पे हैं, तो यानी हम आपके साथ लड़ेंगे, या तो ये कर लें। नंबर टू, दूसरी सूरत यह है कि आप पिछले दरवाजे से निकल जाएं, सवारी पे बैठ के आप मक्का चले जाएं, वो वहां पे नहीं आपके पीछे आ सकते। तीसरी बात यह है कि आप शाम चले जाएं, वहां पर अहले शाम आपकी इताअत करेंगे और दिफा की ताकत भी रखते हैं। और वहां एक बात ये मैं अब आपको पॉइंट बताना चाहती हूँ जो मैं आपको उस वक्त बता, वहां मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, क्यों मुआविया का फरमाया, मुआविया बनू उमैया से थे, इनके कजन लगते हैं, ठीक है, अबू सुफियान, जी। और आप समझे हैं कि वो क्यों ऐसे लोगों को, ट्रस्टवर्दी लोगों को रखते थे, उन्होंने उनका नाम लिया कि आप उनके पास चले जाएं। और आप बाद में भी देखेंगे हजरत मुआविया ने फिर इन्हीं के खून के ऊपर तो कितनी बाद में मसले मसाइल पैदा हुए थे, जो जंग हुई और सब वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो वहां पे मुआविया है वो आपका साथ देंगे, और आप ये भी इनको भी कोई मसला होता था तो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया करते थे। तो सईदना उस्मान ने जवाब दिया कि जहां तक लड़ाई का ताल्लुक है तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में वो पहला आदमी नहीं बनना चाहता कि जिसकी वजह से किसी मुसलमान मुसलमान से लड़े और मुसलमानों का खून खराबा हुआ। यानी आप, मैंने जैसे आपको बताया, इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मुसलमान मुसलमान से लड़े। तो मैं पहला वो आदमी बन जाऊं कि जिसकी वजह से मुसलमान मुसलमान के खिलाफ तलवार उठा ले और तारीख में ये लिखा जाए कि उनके दौर में ये हुआ था, उनकी वजह से ये हुआ था। फरमाया दूसरी बात कि मैं मक्का चला जाऊं और ये वहां मुझे, मेरे पीछे नहीं आ सकेंगे, तो मैं वहां इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कुरैश का एक आदमी मक्का की बेहुर्मती करेगा और उस पर पूरे निसफ आलम का आजाब होगा। ये मक्का की बेहुर्मती, क्योंकि वो हुरमत वाली जगह है ना, कि वहां पर ये खून खराबा अगर हुआ, वहां पर लड़ाई हुई तो उसकी हुरमत पामाल होगी। और मैं ऐसा शख्स हरगिज नहीं बनना चाहता कि आपका ये कहना कि मैं शाम चला जाऊं तो अहले शाम वहां पे मेरे साथ वफा करेंगे, लड़ाई की सलाहियत भी रखते हैं, फिर सईदना मुआविया भी वहां के अमीर है, तो मैं अपना दारुल हिजरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस छोड़ के नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। तो सईदना अब्दुल्ला बिन जुबैर, उन्होंने भी अपना मशवरा दिया। अब हर कोई आ रहा है, ये मुगीरा बिन शोबा ने ये तीन बातें कही थी। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो थे वो भी जैसे इनके घर में रह रहे थे, तो उनको इन्होंने सख्ती से रोक दिया था कि आपने किसी सूरत भी तलवार नहीं उठानी। और इन में इनसे लड़ाई ना करने की इनको कसम दी थी कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने आपके लिए इनसे लड़ाई करना, वो कहते थे आपके लिए अल्लाह ताला ने हलाल किया। तो सईदना उस्मान फरमाते, नहीं, अल्लाह की कसम मैं कभी भी नहीं लड़ूंगा। एक रिवायत में कि इब्ने जुबैर ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपके साथ घर में एक समझदार ग्रोह है, अल्लाह ताला तो इससे भी कम की मदद कर देता है, आप हमें लड़ाई की इजाजत दें। फरमाया, मैं अल्लाह की कसम देकर मना करता हूँ कि कोई शख्स मेरी वजह से खून ना बहाए, मेरी वजह से किसी का खून ना बहाए। जो मेरी इताअत पर कायम है वो अब्दुल्ला बिन जुबैर की बात ना माने, क्योंकि वो कह रहे थे लड़ें। आप बार बार ये देखेंगे कि वो कह रहे हैं मेरी वजह से मुसलमानों का खून ना बहे। अब भाग जाना भी एक आसान बात था, और ऐसी सिचुएशन में इंसान कहता नहीं है कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया और ये कर रहे हैं मेरे साथ, तो मेरे लिए तो इजी वे आउट है ना, पीछे के दरवाजे से भाग जाऊं और फिर उसके बाद इनके ऊपर हमला करूं या कहीं ताकत लेकर आके, तो फिर ये क्या कर लेंगे, बहुत कुछ हो सकता था। फिर उन्होंने कहा ये एक एक मेरी जान के पीछे है ना, मेरी वजह से खून ना बहे। फिर सईदना काब बिन मालिक और जैद बिन साबित अंसारी, उन्होंने भी सईदना उस्मान की मदद करने का कहा, और उन्होंने कहा, क्योंकि ये अंसारी थे तो ये अंसार के पास गए और उनसे कहा, ए अंसार, दो मर्तबा अल्लाह के अंसार बन जाओ। एक दफा कब थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे, तो अंसार है ना मददगार, तो उस वक्त तुम मददगार बने थे ना, अब भी मददगार बन जाओ। ये सुनकर अंसार खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम मददगार हैं, हम लड़ने को तैयार हैं। और सईदना उस्मान से जाके इन्होंने, जैद बिन साबित ने अर्ज किया कि अंसार दरवाजे पे हैं, वो हाजिर हैं, आपका हुक्म हो तो हम दूसरी मरतबा अंसारुल्ला बनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सईदना उस्मान ने लड़ने से इनकार कर दिया, फरमाया मुझे इस बारे में किसी के तरफ से दिफा की जरूरत नहीं है। सईदना हसन बिन अली को भी आपने फरमाया कि अगर, वो कह रहे थे कि मैं अपनी तलवार निकालूंगा, मैं लड़ूंगा, तो फरमाया नहीं, अगर तुम ये कदम उठाओगे तो मैं तुम्हारे खून से बरी हूं, अपनी तलवार मियान में डाल लो और अपने बाप के पास वापस चले जाओ। सईदना अब्दुल्ला बिन उमर भी असलहा लेकर आए हुए थे, सहाबा कराम ने देखा कि मामला बहुत हद से बढ़ रहा है और पानी सर से गुजरने लगा है, तो उन्होंने, जाहिर है उन्होंने सोचा कि हम खुद ही खड़े हो जाते हैं, चाहे ये नहीं भी हमें इजाजत दे रहे, लेकिन हम इनके घर का दिफा करेंगे, इनका दिफा करेंगे। इनमें ये सईदना इब्ने उमर भी शामिल थे। तो आपने तलवार लटका रखी थी, जिरा पहन रखी थी, लेकिन सईदना उस्मान ने सख्ती से मना कर दिया, हुक्म दिया कि आप चले जाएं, क्योंकि लड़ाई की सूरत में ये अंदेशा था ना कि ये कत्ल हो जाएंगे, वो इतने सारे हैं, आप लोग लड़ेंगे, किसी ना किसी का तो खून होगा। अबू हुरैरा को भी, वो भी चाह रहे थे कि मैं भी लड़ूं, तो उन्होंने फरमाया भी क्या है, अमीरुल मोमिनीन, लड़ाई हलाल है। आपने फरमाया, अबू हुरैरा, क्या तुम पसंद करते हो कि मैं भी मारा जाऊं और सारी इंसानियत मारी जाए? तो सईदना अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुमने एक आदमी का भी कत्ल किया तो ये क्या है, कुरान क्या कहता है, पूरी इंसानियत को कत्ल करती है। देखिए उनकी सोच ना, आज कत्ल करना कोई मुश्किल बात ही नहीं रही किसी के लिए। आज तो ऐसे कत्ल किए जाते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं है। और वो क्या फरमा रहे हैं कि एक आदमी का भी कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो तुम क्या ये चाहते हो? अल्लाह अकबर। सुलैत बिन सुलैत के जज्बात ऐसे थे कि वो कहते हैं कि हमें सईदना उस्मान ने किताल से मना कर दिया, अगर सईदना उस्मान हमें इन खारजियों से लड़ाई की इजाजत दे देते तो हम इन्हें मार मार के मदीना से भगा देते। क्योंकि आपको पता है कि तारीख दान लिखते हैं कि ये जो लोग थे जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया, यही बाद में खवारिज बने। ये जो खवारिज थे ना, इनका अभी नाम इनका ऐसा नहीं आया था, लेकिन इनका जो बीज था वो समझने पड़ गया था। यही सारे खारजी लोग बने हजरत अली के दौर में। इमाम इब्ने सीरीन लिखते हैं अपनी किताब में, वो कहते हैं सईदना उस्मान के साथ घर में 700 आदमी थे, अगर आप इन्हें बागियों से लड़ाई की इजाजत देते तो वो उनको मार भगाते। घर में मौजूद लोगों में इब्ने उमर, हसन बिन अली, इब्ने जुबैर, ये सब थे। तो 700 लोग घर में एक आना, आप सोचेंगे उनका घर कितना बड़ा होगा, कितना खुला होगा, ऐसे तो नहीं महल कहते थे ना। तो इससे पता चलता है कि जो मुसलमान थे वो इनके साथ थे। और किसी तरह भी, मगर इनकी तरफ से खुद इतनी रिसेंटमेंट थी कि नहीं लड़ना हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनको वसीयत की हुई थी, ये भी एक वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि वो आपने इस वक्त में जब वो आपसे खिलाफत लेने लगे तो आपने ये लिबास उतारना नहीं है, ये कमीज नहीं उतारनी जो अल्लाह ने आपको पहनाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये भी बता दिया था कि फितने आएंगे, और ये भी बता दिया था कि आपकी शहादत होगी। और ये राज में भी इनको काफी वसीयतें की थी, जिसको इन्होंने बाद में बताया, मुहासरे के दिन बताया कि मुझसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया हुआ और मैं इसके ऊपर पक्का रहूंगा। मैंने आपको वो अहदीस बताई ना, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बात कर रहे थे, और आप ये भी फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुलफा में से पहला शख्स बनूं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खून बहाने में हो शामिल। और एक और वजह, उनका पता था कि इनका जो बागी है, इनका टारगेट तो सिर्फ मैं हूं, तो मैं अपनी वजह से क्यों मुसलमानों का खून बहाऊं? तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एकदम जहन में आता है ना कि क्या ऐसी वजह थी कि तलवार क्यों नहीं उठाने दी, क्या ऐसी वजह थी। बहुत से लोग सवाल भी करते हैं, क्या ऐसी वजह थी कि मतलब उनके साथ थे भी लोग लेकिन उनको क्यों नहीं, उन्होंने उनका मुकाबला किया। और एक और वजह यह है कि इनको यकीन था कि ये इस फितने में कत्ल कर दिए जाएंगे। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इनको यकीन था। और ये भी है कि सईदना अब्दुल्ला बिन सलाम का भी मशवरा था, जब उन्होंने कहा था कि आप डट जाएं और आप दुश्मन पे हुज्जत कायम कर दें कि यानी आप तो मजलूम हो, वो ही जालिम हो, आप जालिम नहीं बने। और सहाबा कराम के भी यही मशवरे थे, जो जलील कदर सहाबा थे। तो मतलब ये सारी बातें वजूहात हैं जिनकी वजह से उन्होंने हथियार नहीं उठाए। और इब्ने तैमिया भी लिखते हैं अपनी किताब में कि सईदना उस्मान खून बहाने में सब लोगों में सबसे ज्यादा मुहतात थे, और जिन लोगों ने आपकी तौहीन की, आपको कत्ल करने की कोशिश की, आपका मुहासरा भी किया, इसके बावजूद कि आपको पता था कि ये इनके ये नापाक इरादे हैं, इनके सब्र की इंतहा थी। और मुसलमान आपकी मदद के लिए आए भी, बागियों से लड़ाई का भी मशवरा देते रहे, लेकिन लड़ाई करने का ये हुक्म नहीं दे रहे थे। और आपने यही फरमाया कि जो मेरी इताअत पे कायम है वो लड़ेगा नहीं, और बाकी भी चीजों में इन्होंने उनका मशवरा नहीं कबूल किया। हमें यह भी पता चलता है कि उम्मे हबीबा जो उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, किनकी बेटी हैं उम्मे हबीबा? अबू सुफियान की बेटी है, और हमारी माँ। और अबू सुफियान इनके एक तरह से चचा लगे, इनके उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले से हैं, बनू उमैया से। तो उम्मे हबीबा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा कि ये कि उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माएं हैं, वो निकली हैं। जब उनको पता चला कि इनका पानी बंद कर दिया गया, तो सईदा उम्मे हबीबा ने अमर बिन हजम अंसारी के दो बेटों को, जो इनके पड़ोसी थे हजरत उस्मान के, उनको पैगाम दिया कि हजरत अली की तरफ पैगाम भेजो कि बागियों ने पानी बंद कर दिया, तो किसी तरह पानी भिजवाएं। इसी तरह उन्होंने और लोगों को भी पैगाम भेजे। सईदना अली और सईदा उम्मे हबीबा ने सबसे पहले मदद करने की कोशिश की, और सईदा उम्मे हबीबा जो थी, वो तारीखी किताबों में लिखा है कि आगे खुद बढ़ी और उन्होंने पानी लेके गई, लेकिन बागियों ने उनके खच्चर जो था उसके चेहरे पर मारा। तो सईदा उम्मे हबीबा ने फरमाया, बनू उमैया के कुछ अफराद की वसीयतें उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के पास है, मैं उनसे मिलके वसीयतों के बारे में तो पूछ लूँ, मुझे वहां तक तो जाने तो दो ताकि यतीमों का और बेवगान के माल जाया ना हो जाए। देखे ना, जैसे मसलन है कि मेरे पास किसी की वसीयत पड़ी है, तो मुझे ही पता है ना कि उसकी वसीयत क्या है, तो वो कहती मैं जाके पूछना चाहती हूँ कि वसीयतें क्या। बागियों ने कहा आप झूठ बोलती हैं, फिर हमला आवर हुए और आपके खच्चर की रस्सी तलवार से काट दी। वो जो खच्चर था वो भिदक गया, वो भागने लगा, वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और सईदा उम्मे हबीबा भी एक तरफ लुढ़क गई और लोग खच्चर से फिर चिमट गए, फिर जाके उसको रोका और पकड़ा, वरना खच्चर उनको गिरा देता, वो जख्मी हो जाती। तो वो बाल बाल बची और लोग फिर उनको उनके घर ले गए। फिर वो उम्मे हबीबा ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि वो सईदना उस्मान के साथ रहे, और इतने शदीद हंगामों के बावजूद वो इब्ने जराह उनका नाम था गुलाम का, तो वो आखिर वक्त था सईदना उस्मान के साथ रहे। फिर उम्मुल मोमिनीन सईदा सफिया, उन्होंने, आपको पता है सफिया बिन हुई, उन्होंने भी मदद की कोशिश की, और उन्होंने ये किया कि कनाना बिन आदी से मरवी है कि मैं सईदा सफिया की सवारी की लगाम थामे हुए था, और वो सईदना उस्मान का दिफा चाहती थी। रास्ते में उनको कोई मिल गया, उसने आपके, यही शरपसंद, उसने आपके खच्चर के चेहरे पर मारा, यहाँ तक कि आप गिर गई। इस पर आपने फरमाया मुझे छोड़ दो, ये मुझे रुसवा नहीं कर सकता। उसके बाद आप अपने घर की छत से, सईदना उस्मान के घर की छत तक लकड़ी का पुल बनाया, और उस पुल के जरिए खाना और पानी उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के घर तक पहुंचाया गया। और उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा, वो भी बागियों पे बहुत बरहम हुई। सईदा उम्मे हबीबा के साथ जब ये बदतमीजी हुई, तो उसके बाद सईदा आयशा मदीना छोड़ के चली गई। मरवान बिन हकम ने उनसे गुजारिश की कि उम्मुल मोमिनीन, अगर आप यहाँ रहती तो मुमकिन था कि लोग उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उनकी हिफाजत कर सकते। इस पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि मेरे साथ भी वही सलूक हो जो उनके साथ हुआ, फिर मुझे कोई ऐसा शख्स भी ना मिले जो मेरी हिफाजत कर सके। अल्लाह की कसम मैं आर नहीं दिलाऊंगी, कोई ऐसा कदम नहीं करूंगी, उठाऊंगी जो बायसे मलामत हो। मुझे नहीं मालूम इन लोगों का मामला कहाँ तक पहुंचेगा। अब ये उन्होंने क्यों यहाँ से गई थी, इसलिए क्योंकि उम्महातुल मोमिनीन को लोग देखते थे। जैसे आप देखिए ना, मिसाल के तौर पे कि इमाम काबा हो, तो हर कोई देखेगा ना, अब ये क्या कहते हैं, ये किसकी साइड पे हैं, उसके मुताबिक फिर आप अपने यानी आपकी भी राय वैसे कायम हो जाती है ना, क्योंकि इतने बड़े इमाम है। तो लोग इन उम्महातुल मोमिनीन को देखते थे कि ये क्या कर रही है, ये किसके साइड पे खड़ी है। वो चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊं, वो हज के लिए रवाना हो गई उम्महातुल मोमिनीन, हज का सीजन था। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास को हजरत उस्मान ने अमीर बनाया हज का, कि आप जाएं और लोगों को हज कराएं। ये हज पे चले गए, उन्होंने कहा लोगों को पता चले कि हम मदीना छोड़ के चले गए हैं, तो लोगों को ये एहसास हो कि हम इस फितने के अंदर शामिल नहीं है। और ये आपको जैसे कि पता है कि इन फितना परवर लोगों में सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला के भाई, सौतेले भाई कौन शामिल थे, मोहम्मद बिन अबी बकर, मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने अपने भाई को भी साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और हजरत हंजला जो है, वो मोहम्मद बिन अबी बकर के इनकार से, वो बड़े, क्योंकि वो भी कातिब कातिब थे, तो वो बहुत खौफजदा हुए। उन्होंने मोहम्मद बिन अबू बकर से कहा है, मोहम्मद, उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहती, तो तुम उनके साथ चले क्यों नहीं जाते, वरना ये अरब के भेड़िए तुम्हें नाजायज काम की दावत देते हैं, तो तुम इनके पीछे लग जाते हो। तो लेकिन मोहम्मद बिन अबू बकर ने फिर इनकार किया। सईदा आयशा ने फरमाया, अल्लाह की कसम अगर मेरे बस में होता तो मैं इन लोगों को जरूर कोशिश के साथ रोक सकती, लेकिन वो औरत थी, क्या कर सकती। और मोहम्मद बिन अबू बकर आपको पता है इनके सुतेले भाई थे, यानी बाप की तरफ से भाई थे, लेकिन अस्मा बिनत उमैस के बेटे थे। मैंने जब आपको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की जिंदगी का बताया था, तो मैंने आपको बताया था ना हज्जतुल विदा पे जब वो जा रहे थे, तो अस्मा बिनत उमैस के यहाँ पैदा हुए थे मोहम्मद बिन अबू बकर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो इतने छोटे थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हो गई थी। तो सईदा आयशा जो थी अपने भाई को रोकना भी चाहती थी, और उस पर इजहार अफसोस भी करती रहीं कि ये नहीं रुक रहे और मेरे कहने में नहीं आ रहे। और ये इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन और बाज़ दूसरे सहाबा ने बागियों का हंगामा ख़त्म करने के लिए उन्होंने मदीना से जाने का इरादा किया। उनको ये उम्मीद थी कि ये लोग इसकी वजह से डिस्पर्स हो जाएंगे ना, लेकिन वो नहीं हुए। और वो चाहते थे कि मदीना में ऐसा कोई काम ना हो, कोई खून खराबा ना हो। और इसके लिए उन्होंने ये कदम भी उठाया, लेकिन उनको भी इस चीज़ का वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये चीज़ इस एक्सटेंट तक पहुंच जाएगी। जो सईदा अस्मा बिनते उमैस हैं, कौन है अस्मा बिनते उमैस को याद है? जी जी अबू बकर रजी अल्लाह तआला की वाइफ है, और वो उससे पहले हजरत जाफर तैयार की वाइफ थी। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से भी उनकी शादी हुई, फिर हजरत अली से उनकी शादी हुई थी। और हजरत अली के यहाँ ही मोहम्मद बिन अबू बकर ने परवरिश पाई थी, कि वो छोटे ही थे जिस वक्त अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला की वफात हो गई थी। तो सईदा जो अस्मा बिनते उमैस हैं, ये अपने दोनों बेटों को समझाने की इन्होंने बहुत कोशिश की। दोनों बेटों में कौन थे? मोहम्मद बिन अबू बकर और मोहम्मद बिन जाफर, ये दोनों थे इसके अंदर शामिल। तो वो कहती थी कि इसने तुम्हारे पर कोई ज्यादती नहीं की, तुम आज जो कुछ कर रहे हो ये गैरों के हाथों में तुम खेल रहे हो। अब देखिए, जब ऐसे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं ना, तो बाज मासूम लोग भी उसके अंदर उसका शिकार हो जाते हैं, बाज नेक लोग और अच्छे लोग भी। इसलिए मैंने आपको कहा ना, जब ऐसा कोई हो जिसमें आपको समझ नहीं आ रही ना, जस्ट बैकफुट पे चले जाएं और किसी का साथ भी ना दें, बजाय इसके कि अपने आप को किसी जालिम के साथ लगाने के। तो वो कहती थी कि दूसरे लोग इससे फायदा उठाएंगे, लिहाजा तुम इन चीजों से बचो। लेकिन उन दोनों ने जिद की और अपने रवैये पर कायम रहे और शोर मचा के वो गुस्से में कहते थे, उस्मान ने हमारे साथ जो किया ना, हम उसको कभी भूल नहीं सकते। तो वो कहते हैं, क्या किया उसने तुम्हारे साथ? क्या उसने तुम्हें अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी छोड़ने का हुक्म दिया या पाबंदी ना करने का हुक्म दिया? क्या तुम्हें ऐसा कहा? तो असल में उनका इशारा किस तरफ था? वो ये कह रहे थे कि वो जो खत था ना, उसके अंदर इनका भी नाम लिखा हुआ था कि इनको भी कत्ल किया जाए। जिससे भी शरीफ ने ये हरकत की, उसने ये भी किया है। और वो जानती थी कि इनके बेटे इस तरफ हैं, लेकिन फिर भी देखें, ये होता है हक पे कायम रहना, कि अपनी औलाद है लेकिन उसमें भी अपनी औलाद का साथ नहीं दिया। ये नहीं हो कि मेरे बेटे जो कह रहे हैं, चाहे गलत कह रहे हैं चाहे सही कह रहे हैं, माओं का तो ये होता है बस अपने बच्चों के साथ लग गया। नहीं, वो डट गई, उन्होंने अपने बेटों से कहा कि ये तुम गलत कर रहे हो, इससे बाज आ जाओ। तो हमेशा याद रखें कि जो हक है ना, उसके ऊपर कायम रहें, चाहे आपकी औलाद गलत कर रही हो, अपनी औलाद को मना करें, लेकिन उनके लाड में और प्यार में और उनकी मोहब्बत में अपनी ममता की वजह से बातिल के साथ ना खड़े हो जाए। सईदा साबा बिनत अल हजरमी, इनका भी अब पता चलता है कि ये भी अपने बेटे तलहा बिन उबैदुल्ला को सईदना उस्मान के पास भेजती हैं कि जाकर उनसे दरख्वास्त करें कि सहाबा कराम और दीगर शहरों के बाशिंदों को उनके दिफा करने की इजाजत दें और खुद अकेले अपने आप को दुश्मनों के सुपुर्द ना करें। अपने बेटे तलहा बिन उबैदुल्ला से कहा कि उस्मान का मुहासरा शदीद हो गया, लिहाजा तुम जाओ उनसे बात करो ताकि वो अकेले ना हो। इससे पता चलता है ना कि मुसलमान औरतें भी समझ रही थीं और वो भी इसमें साथ नहीं थी। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने जब अब्दुल्ला बिन अब्बास को जिम्मेदारी दी कि आप जाएं हज कराने के लिए, तो साथ उनको एक खत दिया जिसमें खुतबा लिखा, हज का खुतबा लिखा कि आप जाओ और आप जाके हज कराओ और ये खुतबा अपने लोगों को पढ़ के सुनाना है। तो अब इब्ने अब्बास जो थे वो रिलक्टेंट थे, वो कहते थे कि मुझे अपने साथ रहने दें ताकि मैं इनका मुकाबला करूं। मुझे हद से ज्यादा ये चीज़ अजीज है कि मैं इन खवारिज के मुकाबले में आऊँ। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं आप जाएं, आपको मैं हुक्म देता हूं कि आप जाके और उनके साथ हज को कराएं, क्योंकि होता यह था कि खलीफा की जिम्मेदारी होती थी कि वो हज कराता था। जो उन्होंने खत लिखा था उसमें कुरान पाक की आयात के अलावा जो उन्होंने बात लिखी थी वो ये थी कि कई कौमें ऐसी हैं जो कहती हैं वो मुसलमान हैं और वो लोगों के सामने ये जाहिर भी करते हैं कि वो किताबुल्लाह और हक की तरफ दावत देते हैं, दुनिया से उन्हें कोई सरोकार नहीं है, वो ये कहते हैं ना, वो इसमें उलझना चाहते हैं, लेकिन जब उन पर हक पेश किया जाता है तो तब उनका असली रूप सामने आता है। कुछ तो हक कबूल करने लगे लेकिन वक्त आने पर इनकार कर दिया, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हक को छोड़ दिया और वो मेरी मौत का इंतजार कर रहे हैं जबकि मेरी उम्र तवील हो गई है और इनके अंदर इख्तदार को हासिल करने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा है कि वो अल्लाह की तकदीर को जल्दी लाना चाहते हैं कि मैं मुझे मौत दे दें, और मैंने इनके सारे मुतालबात तस्लीम कर लिए जो भी इन्होंने कहा था, और मैं तुम्हें इस बात की इत्तला देता हूं कि इन्होंने तकदीर के कामों में जल्दी की है, मुझे नमाज पढ़ाने से रोक दिया है, वो मेरे और मस्जिद के दरमियान हायल हो गए, मदीना से जो कुछ लूट सकते थे लूट लिया, अब जबकि मैं तुम्हें ये खत लिख रहा हूं वो मुझे तीन बातों में से एक का इख्तियार दे रहे हैं, वो कहते हैं आपने जिस भी सही या गलत तरीके से सजाएं दी हैं हम उसका बदला लेंगे और इस मामले में कोई रायत नहीं करेंगे। वो कहते थे ना हमारे साथियों को जो आपने किया है ना हम इसका बदला लेंगे, उसके लिए किसास के लिए अपने आप को पेश करो, और वो कहते हैं मैं खिलाफत से अलैहदा हो जाऊं और वो मेरे अलावा किसी दूसरे को खलीफा बनाएंगे, और वो कहते हैं कि इनको फौजियों और शहरियों की तरफ भेजा जाए जो इनके फरमा बरदार हैं और वो मेरी इस वफादारी और इताद से आजादी का ऐलान कर दें जो अल्लाह ने उन पर फर्ज कर दी, यानी वो चाहते हैं कि मैं इनको भेजूं कि जाओ सारे खलीफा के खिलाफ बगावत कर दो। तो मैंने इसके जवाब में इनसे कहा है कि जहां तक मुझसे बदला लेने का ताल्लुक है तो मुझसे पहले खुलफा भी गुजरे हैं जो सही फैसले भी करते थे और गलत भी करे हैं उन्होंने, क्योंकि तो वो इंसान ही है, मगर उनसे कोई बदला नहीं लिया गया कि अगर मेरे से कोई हो सकता है मेरे से कोई गलत फैसले हुए किसी की तकरूरी का किसी को कहां पे लगाने का, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे बदला लेने खड़े हो जाओ, और मुझे बखूबी इल्म है कि वो सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, और जहां तक खिलाफत से दस्तबरदारी का ताल्लुक है मैं इसे किसी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो मुझे सख्त तरीन सजा भी दें तो वो मुझे इस बात से ज्यादा पसंद है कि मैं अल्लाह के काम और उसकी खिलाफत से ऐलान दस्तबरदारी करूं, और जहां तक मेरी इताअत का है तो मैंने इन लोगों को इताअत पर मजबूर नहीं किया, वो अपनी रजामंदी से मेरी इताअत कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, और फिर इन्होंने कहा कि वो जिस चीज पर मुझे मजबूर कर रहे हैं वो तमाम तर खिलाफत और इकतदार का झगड़ा है, सिर्फ अब मैं सिर्फ अपनी जात और अपने साथियों का इख्तियार रख रहा हूँ, मैं अल्लाह के हुक्म और उसकी नेमत की तब्दीली का इंतजार कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई गलत रिवायत मैं कायम करूँ और मिल्लत इस्लामिया में इख्तलाफ और खून रेजी हो, इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह और इस्लाम का वास्ता दे के कहता हूँ कि सिर्फ हक बात को कबूल करना, मेरे साथ भी हक के मुताबिक सलूक करो, अहले हक के खिलाफ बगावत को छोड़ दो और हमारे मामले में अदलो इंसाफ करो। तो ये सारी बातें इन्होंने की थी और एंड में उन्होंने ये खत में लिखा कि मैं अल्लाह से अपनी और तुम्हारी मगफरत का तलबगार हूँ, दुआगो कि अल्लाह ताला इस उम्मत के दिलों में भलाई और इत्तेहाद कायम कर दे और दिलों में से बुराई और नफरत दूर कर दे। तो सईदना अब्बास ने ये खत ले जाके 7 ज़िलहज को पढ़ के सुनाया वहां पे हुज्जाज कराम को, और अब सूरत हाल काफी खराब हो रही थी और ये भी उनको पता चल रहा था जो बागी थे कि अब जो लोग वहां पे हज करने के लिए आए हुए हैं दूर दराज से, ये बहुत बड़ा इम्कान था कि वो आए खलीफा की मदद के लिए अब हज खत्म करके, तो उनको ये था कि हमने जो काम करना है ना उनके आने से पहले हम कर लें, क्योंकि तो अगर वो आ गए तो कितने लोग हज पे गए वो सारे आ गए तो फिर तो हमारे लिए यहाँ पे अपना वो करना मुश्किल हो जाएगा। तो उनको ये भी पता चल गया था कि मुख्तलिफ शहरों से फौजें आ रही हैं, जो डिफरेंट एरिया से ना वो वहां के गवर्नर फौजें भेज रहे हैं वो इस तरफ का रुख कर रही हैं, और ये हुज्जाज भी हज से फारिग होके इधर आ रहे हैं, तो अब इनके पास एक ही रास्ता था जो फिर इन्होंने इख्तियार किया। और ये मुहासरे का आखिरी दिन था, जुमे की रात। वो पता ना, रात पहले होती है और फिर दिन आता है। इस्लाम में ये है, जो जिसको हम थर्सडे नाइट कहते हैं उसको इस्लाम में हम एक्चुअली फ्राइडे नाइट होती है। उस रात को जब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु सोए तो रात को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ उस्मान क्या इन्होंने तुमसे पानी रोक दिया? तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में कहते हैं, नाम या रसूलल्लाह, हाँ इन्होंने मुझसे पानी रोक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उस्मान क्या इन्होंने तुमसे खाना भी रोक दिया? तो फरमाया, जी या रसूलल्लाह, इन्होंने मुझसे खाना भी रोक दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान क्या इन्होंने तुम्हें मेरी मस्जिद में जाने से भी रोक दिया? तो फरमाया, या रसूलल्लाह, हाँ इन्होंने आपकी मस्जिद में जाने से भी मुझे रोक दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उस्मान, आज आप रोज़ा मेरे अबू बकर और उमर के साथ इफ्तार करना। तो वो उठे और उन्होंने रोज़ा रख लिया, उनको पता था कि आज मेरी शहादत है। तो फरमाया, आज हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करना। और जो बागी थे उन्होंने फिर घर पे धावा बोल दिया। कहते हैं बाज जगह पे आया कि उस दिन इन्होंने कुछ ऐसा कह के, अब ये नहीं पता चलता कि क्या कहा, मगर कुछ ऐसा कह के जो इनके पास थे ना सहाबा कराम, उनको घरों को भेजा। जो भी कहा, कुछ कहा होगा, कुछ वास्ते दिए, या अपनी इताअत के, या आज जुमे का दिन है आप लोग जुमा पढ़े, आज कुछ नहीं होगा, कुछ कहा, लेकिन इनको पता था कि आज कुछ हो जाना है। तो ये भी आता है बाज किताबों में कि फरमाया था, जो शख्स समझता है कि इस पर मेरी इताअत जरूरी है, मैं उसको हुक्म देता हूं कि वो लड़ाई से बाज रहे और वो चला जाए घर। अब हो सकता है थोड़ी देर के लिए उनको भेज जाओ, क्योंकि वो जानते थे कि आज यहाँ पे कुछ खून खराबा होगा। वो नहीं चाहते थे कि ये लोग यहाँ पे हों और किसी का भी खून बहे। ये तो पता था कि आज कुछ ये करेंगे। और मुगीरा बिन अखनस उन लोगों में से थे जो हज से फरागत पाके जल्दी वापस आ गए थे। तो वो सईदना उस्मान की शहादत से पहले ही मदीना पहुंच गए और आपके दिफा के लिए आपके घर में गए। तो उस्मान से मुखातिब होकर फरमाने लगे, अगर हम आपको इस तरह शदीद खतरे की हालत में छोड़ देंगे तो हम अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे? हम ताकत रखते हैं, हम आपका दिफा करेंगे जब तक हमें मौत नहीं आ जाती। और बागियों ने घर के दरवाजे और छत को आग लगा दी। सोचे तो घर वाले भी घबरा गए। तो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ रहे थे, फारिग होकर उनको समझाया कि आप ना घबराओ, और नमाज में मशगूल है, सूरह ताहा पढ़ी है, और सूरह ताहा खत्म की, आपके रात कर रहे थे, फिर शोर और हंगामा और ज्यादा हो गया, लेकिन कुछ नहीं परवाह की, अपनी पूरी नमाज खत्म की। और जब नमाज खत्म की तो कुरान पाक पढ़ने शुरू हो गए, और ये आयत पढ़ रहे थे, कद खलत मिन कबलिकुम सुनन फसीरू फिल अर्दी फंदरू कैफ काना आखिबतुल मुकद्दबीन। तुमसे पहले भी ऐसे वाकयात गुजर चुके हैं, तुम जमीन में चल फिर के देखो कि जुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो कुरान पाक पढ़ रहे हैं और वो लोग अब अंदर घर के अंदर दाखिल हो गए, शोर और हंगामा और सारा, और आपके और उनके दरमियान अब कोई रुकावट नहीं थी। इनके घर वाले सिर्फ रह गए थे और कोई गुलाम वगैरह थे, उनको फरमा दिया कि जो इनके साथ लड़ाई नहीं करेगा वो मेरे बाद आजाद है। गुलाम को ये कहना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो तिलावत कर रहे हैं और रोजे से भी हैं। तो कहते हैं कि एक बागी तो जो था, जिसका नाम नहीं पता चलता, वो आपके पास आया और आपने उसको देखा, फरमाया मेरे और तेरे दरमियान अल्लाह की किताब है, तो वो आपको छोड़ के वापस चला गया। अभी वो निकला था कि ये भी आता है रिवायत में कि मोहम्मद बिन अबू बकर आए। और उन्होंने इनकी दाढ़ी पकड़ ली, मुदारी पकड़ ली और तलवार उठाई, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बाप यहाँ पे होता ना तो वो इसको पसंद ना करता। तो छोड़ के वो निकल गए, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कहा जाता है कि एक बंदा था जबला, उसने तलवार का वार किया, पहले आपका गला दबाया, और उसका बयान है कि अल्लाह की कसम मैंने उनकी गर्दन से ज्यादा मुलायम चीज कभी नहीं देखी, मैंने जब गला दबाया तो मुझे यूं महसूस होता जैसे इनके जिस्म में कोई जिन गर्दिश कर रहा है। फिर इसने इन पर तलवार का वार किया तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने हाथ से, जैसे इंसान रोकता ना इस तरह हाथ से रोका, तो उनका हाथ कट गया। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह की कसम ये हाथ वो है जो सबसे पहले जिसने कुरान लिखा था। कि मक्का के अंदर ना कोई लोग ज्यादा लिखने वाले नहीं थे, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, तो ये उन लोगों में से थे जो लिखना जानते थे। और फरमाया इस हाथ ने सबसे पहले वही लिखी थी। तो हाथ जो कटा है ना, तो उससे जो खून बहा है वो कुराने पाक पे पता है किस आयत पे गिरा है? सूरह बकरा की, फसयकफीकहुमुल्लाह, इनके मुकाबले में अल्लाह आपके लिए काफी है। कितनी बड़ी ये निशानी है। वहुव समीउल अलीम, अल्लाह सुनने वाला जानने वाला, इनके मुकाबले में अल्लाह आपके लिए काफी है। हाँ, एक रिवायत में आता है कि जिस बदबख्त ने पहला वार किया था वो रोमान यमानी था और उसने डंडे का वार किया। तो जब खारजी आपको कत्ल करने के लिए आगे बढ़े तो आपने अशार कहे कि जिनका तर्जुमा यह है कि मैं देखता हूं कि मौत किसी ताकतवर को नहीं छोड़ती। उसने कौमे आद के लिए शहरों में कोई जायपनाह नहीं छोड़ी, वो किला बंद लोगों को भी आ लेती है हालांकि वो किले में होते हैं। मौत वो चीज है जो बुलंद उबाला पहाड़ों की चोटियां फलांग कर भी आद पहुंचती है। तो जब इनके ऊपर इस तरह हमला किया तो इनकी बीवी नाइला, ये पहले ईसाई होती थी, उससे मुसलमान हुई थी, उन्होंने आपका दिफा किया, आपके ऊपर झुक पड़ी और तलवार जब मतलब वार आया तो आगे हाथ किया, तो वो जो सौदान था उस बदबख्त ने तलवार चलाई तो इनकी उंगलियां कट गई। इसीलिए जब ये उनकी उंगलियां और हजरत उस्मान की कोई चीज थी वो लेके वहां पे हजरत मुआविया के पास पहुंची ना, तो वो उसके अंदर ये उनकी उंगलियां थी और इनकी थी चीज, तो वहां से इंतकाम इंतकाम की आवाजें आने लगी कि अब हमने इंतकाम है। फिर आपको पता है फिर उसके बाद तो कभी ये तलवारें अंदर गई ही नहीं ना। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के एक गुलाम थे नजी, जब उसने ये सूरत हाल देखी तो वो लरज गया, गुस्से से बेकाबू होकर उसने सौदान पे हमला किया जिसने हजरत उस्मान के ऊपर तलवार उठाई थी और उसने मारा था। तो उन्होंने इस जालिम को फौरन उसी वक्त कत्ल कर दिया। और जब कतीरा, वो भी एक शरपसंद था, उसने जब देखा कि नजी ने सौदान को कत्ल किया तो उसने नजी पे वार करके उनको शहीद कर दिया, वो जो गुलाम थे। और फिर हजरत उस्मान का एक गुलाम था सबीह, वो उस पे कतीरा पे टूट पड़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब घर में देखें ये लाशें पड़ी हुई हैं, सईदना उस्मान है, उनका गुलाम नजी है और वो दो मुजरिम जो हैं वो उनकी भी लाशें पड़ी हैं। और इतने में जब वो शहीद हो गए तो एक उनमें से बोला, इतने सारे तो लोग थे वहां पे, एक ने कहा जिसका खून हमारे लिए हलाल है उसका माल भी हमारे लिए हलाल है, चलो लूटे उनके घर की चीजों को। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि घर की हर चीज लूट ली, हत्ता के औरतों के जेवर भी छीन लिए। और एक ने इनकी जौजा सईदा नाइला, उन पर झपटा और उनकी चादर छीन ली और उनसे भी बदजुबानी की। घर को लूटने के बाद उन्होंने सदा लगाई कि अब बैतुल माल का रुख करो, वहां पहुंचो इससे पहले कि वहां से भी चीजें ये उठा ले। तो बैतुल माल गए, वहां के मुहाफिजों ने जब ये देखा कि ये लोग इस तरह आ रहे हैं, पूरा मॉब जत्था आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाग चलो, ये तो सिर्फ दुनिया के दीवाने हैं, भागो अपनी जान बचाओ। तो बैतुल माल में सिर्फ दो बोरियां थी गल्ले की जिसको इन्होंने लूट लिया। और फिर भी इनका कलेजा ठंडा नहीं हुआ, इन्होंने उनको शहीद कर दिया। तो उसके बाद ही बाज आ जाते, उसके बाद भी आगे चले ने। और इनके बाद जो ऐसे बद्दू किस्म के लोग थे या जो सारे इनके साथ, देखे एक होते ना असल शरपसंद, उनके साथ भी कई लोग मिल जाते ना, जब इनको शहीद कर दिया तो फिर उनको फिर फिक्र हुई कि हाय ये हमने क्या कर दिया, हमने अमीरुल मोमिन इनको शहीद कर दिया। तो फिर वो पछताने लगे, फिर वो उन्होंने कहा कि हमने बड़ा बुरा कर दिया और हमारा मामला तो ये हो गया। खैर सहाबा कराम के सामने जब बताया गया कि इन लोगों ने इस तरह अब पछता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम बड़े शर्मिंदा हैं इस बात पे, तो सैयदना जुबैर बिन अवाम ने कहा कि वो गौर व फिक्र करते रहे थे लेकिन वो राह रास्त पे फिर भी नहीं आए, और ये लोग हमेशा इसी तरह नादम ही रहेंगे। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह को पता चला तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह उस्मान पर रहम करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनसे कहा गया कि अब कत्ल करने वाले, इनसे कहा गया था कि अब कत्ल करने वाले लोग परेशान हैं, तो उन्होंने फरमाया तुफ है इन पे, वो तबाह हो, इन्हें अल्लाह का अजाब आ पकड़ेगा। और फिर हजरत साद बिन अबी वक्कास को भी जब बताया गया कि वो लोग अब परेशान हो रहे हैं और अब वो लोग पछता रहे हैं, तो उन्होंने भी इनको बददुआएं दी और उन्होंने कहा ए अल्लाह इन्हें जलील व ख्वार कर दे, अल्लाह इनको पकड़। अल्लाह ताला ने साद की दुआ कबूल फरमाई। साद बिन अबी वक्कास थे जो थे मुस्तजाबुल दावात थे, उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो जब उन्होंने ये दुआ की तो उसके बाद वाकई ये सारे लोग, इनका इतना बुरा हाल हुआ कि कहा जाता है कि एक दफा अबू कलाबा बयान फरमाते हैं कि मैं शाम में चंद दोस्तों के पास गया तो मैंने एक आदमी की दर्दनाक आवाज सुनी। वो कह रहा था हाय आग मुझे हलाक कर देगी, हाय आग मुझे हलाक कर देगी। तो मैंने कहा ये कौन है जो इतना बावेला कर रहा है, तो मैंने एक बंदे को देखा जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे और दोनों टांगे भी घुटनों तक कटी थी और दोनों आंखों से अंधा था और चेहरे के बल जमीन पे झुका हुआ था। तो मैंने उससे उसका हाल पूछा कि तुझे क्या हुआ, उसने कहा मैं उन लोगों में शामिल था जिसने उस्मान रजी अल्लाह तआला को कत्ल करने के लिए उनके घर में जाके उन पे हमला किया था। जब मैं उस्मान रजी अल्लाह तआला के करीब हुआ तो उनकी बीवी चीखती चिल्लाती हुई आई, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा था। तो सैयद उस्मान ने मेरी तरफ देख के कहा तो तूने ऐसा क्यों किया, अल्लाह तेरे हाथों को काट दे, तेरे पाँव काट दे और तेरी आंखें अंधी कर दे और अल्लाह तुझे जहन्नुम में दाखिल कर दे। उसने कहा इसके बाद मेरे हाथ और पाँव पे ऐसा रेशा हुआ कि मैं मदीना से भाग निकला और भागते हुए मेरी ये हालत हो गई जो तुम देख रहे हो। उसने कहा अब ना उन्होंने मेरे लिए ये जो बददुआ की थी वो सब सच साबित हो गई, ना हाथ रहे ना पैर रहे ना आंखें रहे, अब सिर्फ इस चीज का इंतजार है कि मैं जहन्नुम में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर। इसी तरह बाकियों के भी हशर बुरे हुए और सैयदना उस्मान की जो शहादत है वो 35 हिजरी में हुई, 35 हिजरी थी। ये जुलहज का महीना था, रिवायात में आता है 18 जुलहज्जा थी और ज्यादा राजे कौल ये कि जुमे का ही दिन था जब शहीद हुए। शहादत के वक्त इनकी उम्र 82 ईयर्स थी। और बाज रिवायात में ये आता है, बाज जगह पे ये भी लिखा हुआ है कि कई दिन इनकी लाश जो है वो दफन नहीं की गई। अल्लाह अकबर। ये भी आता है कि इनकी नमाज जनाजा इनके घर में ही पढ़ाई गई और किसी ने किसी सहाबी का नाम लिया, किसी ने किसी का, लेकिन ज्यादा राजे ये कि जुबैर बिन अवाम ने पढ़ाई थी और इनको गुसल दिया गया, कफन दफन का इंतजाम किया गया। और रात के वक्त यानी मगरिब और इशा के दरमियान इनको जन्नतुल बकी के साथ एक बाग है वहां पे दफन किया गया रात के वक्त ले जाके, कि ये ना हो कि ये लोग आ जाए और इनकी लाश निकाल के, क्योंकि सारे एक तरफ तो वही फिर रहे थे वो लोग, उन्होंने कब्जा एक तरह से कर लिया था, कि ये ना हो इनकी बॉडी को निकाल के कोई बेहरमती करे, तो गुमनाम सा उनको वहां पे दफन कर दिया था। और आप देखें कि वो फिर बाद में वो बाग भी जन्नतुल बकी में शामिल हो गया ना, उसकी दीवार खत्म कर दी गई। तो अब आप अगर जन्नतुल बकी में जाएंगे तो एंड में जाके इनकी कब्र है। और आप देखिए मैंने आपको वो रिवायत बताई थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब बाग में आए थे और कुएं की मुंडेर पे बैठे थे, तो आप सल्लम बैठे हुए हैं साथ उमर साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनकी जगह नहीं थी जब ये आए तो बिल्कुल सामने बैठे। तो आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अबू बकर उमर है और इनकी कब्र सामने है बिल्कुल। तो कहते हैं कि जो इनको यानी बिल्कुल शहीद करने वाला था वो जबला उसका नाम था, उसका रंग काला था और वो मिस्री था और वहां से आया था। और बाज कहते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर भी उसमें शामिल थे, लेकिन ये बात सही नहीं है, इसलिए कि सफिया बिन हुई के जो गुलाम थे वो उस वक्त शहादे उस्मान के वक्त वहां पे मौजूद थे। वो कहते हैं मेरी उम्र 14 साल थी, तो उन्होंने बताया, उनसे जब पूछा गया कि क्या मोहम्मद बिन अबू बकर भी उसमें शामिल थे, तो उन्होंने कहा माज अल्लाह हरगिज नहीं, वो उनके घर में दाखिल जरूर हुए थे, लेकिन जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने फरमाया भतीजे तुम मेरे कातिल नहीं बन सकते, तुम मेरे कातिल नहीं, उन्होंने तुम्हें ये जेब नहीं देता और ये तुम्हारी जगह नहीं है। तो उस वक्त वो, और फिर जब कहा था कि अगर अगर तुम्हारे वालिद यहाँ पे होते तो वो इस चीज को ना पसंद करते, तो ये सुन के वो बाहर निकल गए थे, इसलिए वो उनके खून से भरी हुई जिम्मा है। तो ये भी कहा जाता है कि इनके खून में कोई भी सहाबी शामिल नहीं था, कोई भी सहाबी। और ये सारे, जैसे मैंने आपको बताया कि इमाम नववी भी लिखते हैं कि इनके कत्ल में कोई सहाबी शरीक नहीं, आपको कत्ल करने वाले उजड़ किस्म के और ऐसे रजील से लोग थे जो कत्ल के इरादे से ही मिस्र से आए थे, और मदीना में मौजूद सहाबा उनको रोकने से आजिज थे, और इन्होंने ही उनका मुहासरा किया था और इन्होंने ही उनको शहीद किया था। और फिर उसके बाद ये लोग चले गए थे, जाहिर है भाग गए ये लोग यहाँ से मदीना से। फिर उसके बाद जो हुआ तो आपको पता है कि वो बाद की बात है, लेकिन इनसे जो अहादीस रिवायत हुई हैं वो सारी मैं आपको कुछ उनमें से बताना चाहती हूँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने हदीस को रिवायत करने में बहुत केयरफुल थे, और केयरफुल क्यों होते थे सहाबा कराम के, वो कहते थे अगर हमसे कोई गलती हो गई तो ये ना हो कि हमारी जुबान से निकली भी कोई रिवायत गलत आगे पहुंच जाए और हमारे ऊपर उसका गुना हो। हम तो कोई परवाह नहीं करते ना, व्हाट्सएप पे भी आगे से आगे करते जा रहे थे, हदीस है हदीस है, वो इतने केयरफुल होते थे। तो इनसे आप देखेंगे अक्सर जो अहादीस हैं वो हैं जो नमाज से मुतल्लिक है, वुजू से मुतल्लिक है, कुरान से मुतल्लिक है, या इल्मुल फराइज से मुतल्लिक है, यानी विरासत का जो इल्म है। हिसाब किताब में बहुत अच्छे थे ना, ताजिर थे ना, तो हिसाब किताब जिसमें है। तो इनसे एक हदीस वही है, मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, जब वुजू का तरीका इन्होंने बताया था और उसके बाद हंस पड़े थे, तो फरमाया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही यहाँ पे वुजू किया था इसी जगह पर और हंस दिए थे। फिर इन्होंने वो वाली हदीस भी इन्होंने रिवायत किया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। और ये भी हदीस इन्हीं से रिवायत है कि जिसने ईशा और फजर की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ी उसको पूरी रात की तहज्जुद की नमाज का सवाब मिलता है। और फिर इसी तरह एक आदमी ने इनके साथ सौदा किया था, जमीन खरीदी थी, और उसके बाद बेचने वाला पैसे लेने नहीं आया, तो एक दिन वो कहीं मिल गया तो उससे फरमाया कि तुम पैसे नहीं लेने आए, तो उसने कहा मैंने क्या पैसे लेने आना है, लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं कि तुमने क्यों इतने सस्ते में अपनी जमीन बेच दी। तो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम चाहो तो जमीन वापस ले लो, सौदे को कैंसिल कर दो, चाहो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूं। तो इसलिए कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस याद है, और बड़ी प्यारी उन्होंने इस तरह से हदीस रिवायत की जो हमारे सबके लिए बहुत बड़ा एक सीखने का पॉइंट है। फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस शख्स को जन्नत में दाखिल करेगा जो खरीदने में आसानी करे, बेचने में आसानी करे, कर्ज मकरूज से जब लेना है ना, मुतालबा करना है, तो उसमें आसानी करे, और जब कर्ज अदा करना है तो उसमें आसानी करे। सुभान अल्लाह, कि क्या फरमाया कि आपसे सलाम ने उसके लिए यानी बशारत दी है कि वो उस शख्स को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा जो इसमें, आपको तो पता है ये कारोबारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें लेन देन और इसमें इतनी इतनी एक एक डॉलर एक एक रुपए के पीछे लोग क्या क्या कर देते हैं ना, कितनी बहसें और कितने झगड़े और कितने एक दूसरे के साथ तू तू मैं उगती हैं। तो कोई बात नहीं, एक दो डॉलर इतने डॉलर इसकी कोई परवाह नहीं, आसानी ईज। तो हम कहते हैं ना तुम पागल बन गई, तुमने इतने का ले लिया, नहीं, जो आसानी करने वाला है उसके लिए जन्नत की बशारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। ये इंपॉर्टेंट हदीस ही मैंने कहा आपके सामने रखूं। अल्लाह ताला उनके पर करोड़ों रहमतें करे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक छोड़ दिया कि किस तरह से आप मुसलमान की इज्जत, उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज्जत आपके लिए हराम है, और किसी मुसलमान का खून हमारी वजह से ना बहे, किसी की इज्जत हमारी वजह से खराब ना हो। उन्होंने आखिर वक्त तक अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि किसी मुसलमान का खून मेरी वजह से बहे। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी इसके अंदर नसीहत की बात है, क्योंकि इस चीज को हम कोई बड़ी चीज नहीं समझते आज। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। आज देखें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उन्हों की शहादत को तो लोग जानते हैं, लेकिन ये भी मजलूम शहीद है, इनकी शहादत का किसी को पता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं, और इनके बारे में किसी को पता ही नहीं कि कैसे शहीद हुआ ये, लेकिन हक पे कायम रहे। इनके लिए बहुत आसान था कि ये छोड़ छाड़ के सब भाग जाते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वसीयत थी, जो इनको नसीहत की भी थी उन्होंने, वो फिर कहाँ जाती, जो आपने फरमाया था कि तुमने इसी तरह रहना है, तुमने नहीं छोड़ के जाना, फितने के इस वक्त में तुमने डट जाना। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।